আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু আমার। বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু আমার। বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু আমার। বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র। বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী
দাস।
সেইটা সম্বন্ধে সবে আমার
প্রয়াস,
সেইটা সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস। ধন জন গৃহ দাস তোমার বলিয়া,
ধন জন গৃহ দাস তোমার বলিয়া,
ধন জন গৃহ দাস তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া,
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া।
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি তো আমার মাত্র। তোমার কার্যের তরে উপার্জি বোধ, তোমার কার্যের তরে উপার্জি বোধ, তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহ, তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহ। ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি,
ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি,
ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি,
ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রাণ, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি তো আমার মাত্র পিতা বন্ধু। তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালন তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালন শ্রবণ দর্শন গ্রাণ ভোজন বসন শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বসন নিজ সুখ লাগি কিছু নাই করো নিজ সুখ লাগি কিছু নাই করো ভকতি বিনোদ বলে তব সুখ নিজ সুখ লাগি কিছু নাই করো ভকতি বিনোদ বলে তব সুখ আমার বলিতে প্রভু জয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস প্রেম সকহো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রদ্বৈত কদা সরস্বতী গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয় শ্রী রাধা কৃষ্ণ গৌর গোপীনাথ শ্যাম কুণ্ড রাধা কনকগিরি গোবর্ধন কি জয় বৃন্দাবন মথুর ধাম কি জয় নবদ্বীপ মায়াপুর ধাম কি জয় গঙ্গা মায় কি জয় যমুনা মায় কি জয় তুলসী দেবী কি জয় ভক্তি দেবী কি জয় সমবেদ ভক্তবৃন্দ কি জয় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আবির্ভাব মহোৎসব কি জয় গৌ প্রেমানন্দ গ্লোরিয়াস অ্যাসেম্বলি গডেস গ্লোরিয়াস অ্যাসেম্বলি গডেস গ্লোরিয়াস অ্যাসেম্বলি গ্লোরিয়াস টু শ্রী গুরু অ্যান্ড শ্রী গৌরাঙ্গ You want to know the meaning of this bhajan? Iska arth janna chahte ho? Iska arth hai ki Prabhu Bhakti Mohan Thakur kehte hai ki amar bolite Prabhu aar kichu nahi. Mera apna अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है. क्या कुछ है? क्या कुछ है? थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल यस. तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम वैष्णव भजन गाते हो तो आप उसके भाव को लेकर के अगर आप भजन गाओ, उसका अनुवाद है उसको समझ करके गाओ, तो ये आपकी ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थना होगी. आप भगवान को प्रार्थना करोगे और ये नवदा भक्ति का एक लक्षण है. भगवान को प्रार्थना करना ये नवदा भक्ति का एक लक्षण है. ये भक्ति का आचरण करने से भी हृदय शुद्ध होता है. भगवान की स्तुति करना, भगवान से प्रार्थना करना, इससे भी हृदय शुद्ध होता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर रोज़ अगर आप कम से कम एक वैष्णव भजन गाते हो तो पूरे दिन का बैटरी चार्ज हो जाता है। केवल एक वैष्णव भजन गाते हो तो पूरा दिन का बैटरी आपका, जैसे हर 16 माला जप करने से आपको कैसा अनुभव होता है कि आप पूरा दिन आपको लगता है कि आप सुरक्षित रहते हो। अगर आप 16 माला के साथ अगर ये वैष्णव भजन में तो 5-10 मिनट लगती है, अगर आप उसके अर्थ को समझ करके एक वैष्णव भजन गाते हो तो आप जैसे श्रीमद् भागवतम का एक क्लास सुन लिया है आपने, ऐसा आपको अनुभव होगा। क्योंकि हमारे आचार्य के ये 5-7 लाइन में वो पूरे शास्त्रों का सारांश दे देते, इतना सुंदर हृदय वैष्णव भजन। इसलिए सब भक्तों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रोज प्रतिदिन कम से कम एक वैष्णव भजन गाए। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, या फिर कई वैष्णव आचार्य है जैसे वासुदेव घोष है, लोचनदास ठाकुर है, ऐसे कई प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं, इन्होंने जो वैष्णव भजन लिखे हैं उनके अर्थ को समझ करके उसको गाना चाहिए। गाना नहीं, अगर आप गा नहीं सकते तो उसको सुनना चाहिए। रिकॉर्ड किया हुआ सुन सकते हो या अवेलेबल सीडीज है उससे सुन सकते हो, उनके साथ साथ तो गा सकते हो ना, कोई गा रहा है तो उसके साथ साथ गा सकते हो, और फिर आपके हृदय में वो प्रेम की बाढ़ आने लगेगी, भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ आने लगेगी। आप पूरा दिन याद रखोगे। और ये भजन तो ऐसी चीज़ होती है वैष्णव सॉन्ग्स कि एक बार अगर आपकी जीवा पर लग गया तो आपका काम करते हुए कुछ भी करते हुए पूरा दिन आपके मुंह से यही निकलता जाएगा। तो ये इसका विशेष महत्व है। तो इसका अर्थ है कि हमार बोली थे प्रभु मेरे, मैं अगर कुछ किसी को कह सकूँ कि कुछ मेरा है तो कोई नहीं है, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सब कुछ कृष्णा आप ही हो। या आप यही भाव चैतन्य महाप्रभु को भी कह सकते हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है गौरांग महाप्रभु वो हमारे स्वामी हैं, लेकिन हमारे लिए उनसे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रवचन में कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि उनकी दया का विचार तक करने से आप उल्लासित हो जाओगे। इतना दयालु कोई हो सकता है क्या? मैं लास्ट मायापुर में मैं सुना था, हाँ कुछ बताए थे, मैं मायापुर में कुछ अगली बार कुछ बताना चाहते हो, हम इसके बाद भी थोड़ा बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं अभी कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि अगर आप बहुत सारी गलतियाँ आपके अंदर भरी पड़ी है, आपके मन में बहुत सारे एक दूषित विचार है पड़े हुए, आपके हृदय में बहुत सारा कचरा जमा हुआ है काम क्रोध लोभ आदि सब, फिर भी अगर आप निष्ठा से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हो, उनकी शरण लेते हो, तो भी आपको भगवत धाम भेज देते हो, तो भी। और इसका रीज़न क्या? फुल डिस्काउंट, जो कुछ भी किया सब माफ, जब सब क्षमा। आपको मैं तो बहुत पाप किया, लेकिन पाप की उनके सामने कोई वैल्यू है ही नहीं चैतन्य महाप्रभु के सामने। अब देखो इतने महान है चैतन्य महाप्रभु, अब उनकी शरण हृदय से लेनी चाहिए। और इसमें क्या भाव प्रस्तुत किया गया है कि मेरा कुछ है ही नहीं प्रभु, पिता, माता, बंधु, भाई, सब कुछ आप हो, तभी यहाँ पर हमारा जो सेट है उसका क्या? हाँ, ये टेम्पररी है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस टेम्पररी। तो इसके लिए अभी कुछ समय पहले कुछ एक वक्त से मैं बात कर रहा था, तो वो वक्त बड़े चिंतित होकर मुझे बोल रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो पहले तो मैंने उनको बताया कि देखिए आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सब कुछ नश्वर है, आपका शरीर भी नश्वर है, आपका पोजीशन भी नश्वर है, आपका सब कुछ नश्वर है, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा सोचो मत। मेन पॉइंट ये है कि अभी आपके पास जो सांस बचे हैं ना, उसमें आप कृष्ण का कितना सेवा कर पाते हो, गुरु का कितना सेवा कर पाते हो। अगर आप इतना कर पाओ तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। अभी मैं इधर आया उससे पहले मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अंदर, इनसाइड आई वॉज टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन। तो मैंने उनको कहा, कुछ दूसरे भक्त थे, तो मैंने उनको कहा कि एक प्रार्थना कीजिए, आप एक प्रार्थना कीजिए भगवान से कि इस लाइफ में सुख मिले या नहीं मिले इससे हमें कोई परवाह नहीं है। सुखी हम नहीं होंगे चलेगा, क्योंकि सुख मिलेगा ही नहीं ना। रॉन्ग क्वेश्चन। कृष्ण के पास जाएंगे हे कृष्ण मुझे सुखी कीजिए, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। दुखों का आला है, यहाँ पर कहाँ सुख मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो एक ही उपाय है, नित्यानंद प्रभु बताते ना, करो मुझे सुखी। हाँ प्रभु एकदम प्रेमा से सुखी, कृपा लोकन करो हमें बड़े दुखी। तो वो सुखी कैसे बना सकते हैं आपको, एक ही तरीका है, आप केवल भगवान और गुरु ये दोनों की अपनी पूरी क्षमता के सामर्थ्य से आप उनकी सेवा करो, अपराध से बच करके बस हो गया काम। अभी आपको कोई पुरस्कार देता है या नहीं देता है, आपको कोई सलाम भरता है या नहीं भरता है, आपको कोई प्रणाम करता है या नहीं करता है, आपको कोई सीनियर डिवोटी नाम देकर बुलाता है या नहीं करता, ऑल दिस आर सुपरफिशियल। सब बाय। आप जनरली हमारी इच्छा क्या होती है कि हमारी पोजीशन के अनुसार हमें लोग रिस्पेक्ट दे, अगर वहीं पर कहीं पर भी त्रुटि आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। 20 साल से प्रभु जी मैं भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी इतना रिस्पेक्ट, आई कैन एटलीस्ट दैट मीन रिस्पेक्ट आई डिजर्व, बट दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। माई पॉइंट इज दैट इन ब्रीफ दैट सब कुछ जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ हमारे मन को किस तरह से आप समझाते हो, किस तरह से आप मन को ट्रेनिंग देते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। कितनी अच्छी से आप ये अहंकार काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि कितनी अच्छी तरह से आप मन को टैकल कर लेते हो इससे बचने के लिए, पूरा इस पर निर्भर करता है। और ये सब कैसे होता है, ये श्रद्धा पर निर्भर है ना। श्रद्धा, वी नीड फेथ। फेथ चाहिए, किस पर फेथ चाहिए, कृष्ण पर चाहिए, फिर गुरु पर चाहिए, फिर वैष्णव पर चाहिए, फिर हाँ शास्त्र पर चाहिए, और इन शॉर्ट भक्ति की प्रोसेस पर। हमारी जो प्रोसेस है भगवान की सेवा करने की, भक्ति की, नवदा भक्ति है या परंपरा ने, आचार्य परंपरा ने हमें जो सिखाया है, इस पर हमें फेथ होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और ये फेथ कहाँ से, फेथ का जन्म कहाँ होता है, सिद्ध भक्तों की संगति में। और ये इतना प्रैक्टिकल है कि आप एक बार भक्तों की संगति में जाते ही आपको इसका अनुभव होने लगता है कि फेथ बढ़ रहा है। ये भक्तों का यू नो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डिवोटीज। हम जिन भक्त के संगति करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि ये इनकी संगति से हमारी फेथ बढ़ रही है, अनुभव करते हैं। आप समझे, इसके ऑपोजिट नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे किसी भक्त की संगति करना शुरू करो जो आपकी फेथ डाउन कर दे, तो वो आपके हित में नहीं है। समझे, तो हमें उन भक्तों की फेथ भक्तों के साथ संगति करें जिससे हमें फेथ बढ़े भगवान में, गुरु में, शास्त्रों में, भगवान के नामों में। और जब इस तरह से हम फेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम मन को अच्छी तरह से डिक्टेट कर पाएंगे। हम मन को कह सकते हैं कि अभी तुम काम से प्रभावित हो, अभी तुम क्रोध से प्रभावित हो, अभी तुम पोजीशन से प्रभावित हो, अज्ञान से प्रभावित हो, अहंकार से प्रभावित हो। बता सकते हो आप मन को, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एंड यू आर सो डिटर्मिंड। आप इतने दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय हो जाते हो श्रद्धा के कारण कि आप मन के सामने ऑर्डर कर सकते हो। know, you can stop your the command of your mind. फिर क्या चाहिए आपको? What else you need? फिर क्या चाहिए आपको? फिर तो एकदम सही गाड़ी चल रही है ना आपकी प्रोसेस में. What else you need? और बाद में क्या होता है, एक बार आपने मन को कमांड दिया और उस हिसाब से कार्य हुआ, यू डोंट नो हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू विल गेट. कितना आनंद होगा आपको, कितना सुख होगा, यू नो, आपको ऐसे मन में ये सुख, यू नो, यू विल फील हैप्पी कि आज मैंने मन का तिरस्कार किया. यू विल फील हैप्पी. So let me finish this, otherwise I'll just go on. Oh my gosh, it's a big break. धन जन गृह द्वारा तुम्हारा बोलिया रखा को या मत सेवक कोया तुम्हारा कोई तुम्हारा कार्य तो तोरे उपार्जित धन. आपकी सेवा के लिए मैं धन उपार्जन करूँगा. तुम्हारे संसार व्यय करीब होगा और आपके लिए ही मैं इसका व्यय करूँगा, इसका उपयोग करूँगा धन. नॉट फॉर अदर पर्पज, नॉट फॉर माई कम्फर्ट, फॉर योर कम्फर्ट कृष्ण. तुम्हारा भालो मंद नहीं जाने सेवा मात्र करी. अभी अच्छा क्या है बुरा क्या है इतना तो मेरा बुद्धि नहीं है. भालो मंद नहीं जानी, मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि भालो अच्छा क्या है बुरा क्या है. मुझे तो केवल एक चीज आता है, आपकी सेवा कर सकता हूँ. आई कैन सर्व यू. भालो मंद नहीं जाने सेवा मात्र करी. और मैं तो केवल ये पूरा संसार मेरे आसपास जो है मैं तो केवल उसका एकमात्र यू नो गार्ड प्रोटेक्टर वॉचमैन हूँ. वॉचमैन बस देखता हूँ. आपके संसार को देखने का काम है मेरा. वॉचमैन नथिंग एल्स. आपकी सेवा के लिए मेरी सारी इंद्रियों का सारा जो विनिमय है वो सब आपकी इच्छा से होता है. आपकी इच्छा है आज बिना चश्मे के मैं देख सकता हूँ तो आप देख सकता हूँ, लेकिन बाद में अगर आप चाहते हो कि मैं चश्मा के साथ देखूँ चश्मा के. ये तो सैंपल दिया मैंने, लेकिन कुछ भी सब कुछ भगवान के हाथ में है. यहाँ तक कि आप जो भोजन लेते हो ना, भोजन क्या है, श्रवण दर्शन ग्रहण भोजन वासना सब कुछ, उसको पचाते भी भगवान है, उसका स्वाद भी भगवान से आता है. यस, एक बार मैं गलती से कुछ बहुत ज़्यादा गर्म मुँह से लग गया तो क्या हो गया, जीवा का जो स्वाद है वो चला गया. एक बार मैं डाकोर गया था, डाकोर में वहाँ पर किसी ने मुझे छोटा सा प्रसाद दिया था रणछोड़ का अंदर से, तो पता नहीं उसमें क्या था, वो पान कुछ विशेष था. उसको जीवा पर रख जब रखा, दो दिन तक किसी भी चीज़ में कोई स्वाद ही नहीं था. जस्ट इमेजिन कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. कितने उपाय कर चुके, कुछ नहीं हुआ. माई पॉइंट इज कि इंद्रियां भी आपके नियमन में नहीं है, वो सब भगवान के इशारे पर काम करती है और भगवान के कंट्रोल में. सो व्हाई डोंट यू सरेंडर टू कृष्ण, डोंट फॉरगेट कृष्ण. नीच सुख लागे किछु नहीं कर आर, मेरे अपने सुख के लिए मुझे अब कुछ नहीं करना है, बहुत कर चुके पहले अपने सुख के लिए, जो मन में आता था कर लेते थे, जो इच्छा होता था करते थे. नीच सुख लागे नहीं नहीं किचु नहीं सुख लागे किचु नहीं करा, मुझे और कुछ नहीं करना है अपने सुख के लिए. भक्ति विनोद बोले तब सुख सार, आपका सुख एकमात्र मेरा इच्छा है, एकमात्र मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है क्या, आप सुखी हो और कुछ नहीं, एकमात्र मेरी इच्छा है जीवन की. जनरली हम भक्ति में भी स्वार्थ रख देते हैं, स्वार्थपूर्ण भक्ति होती है हमारी, उसमें भी हम सब जगह स्वार्थ देखते हैं अपना भगवान के सामने, भगवान की खुशी या भगवान की ना खुशी उससे कुछ लेना देना नहीं है. सफी ऐसे बता देते हैं सुपरफिशियली कि हाँ हाँ नहीं मैं तो भगवान के लिए करता हूँ भगवान के लिए। लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो क्या करते हैं हम, सब कुछ अपने लिए करें भगवान के लिए करें? सही मूड तो ब्रजवासियों का है भगवान की खुशी के लिए, कुछ भी करने को तैयार है, पानी में कूदो कूद रहा हूँ, कुछ भी करने को तैयार है। हम छोटी सी छोटा सा एक मुश्किल कोई झेलने को तैयार नहीं होता। Why should I suffer? Why me? सब कुछ मुझे ही क्यों सफ़र करना है, मैं ही हमेशा क्यों झुकूँ? That is the problem with us. ये हमारी समस्या। इसलिए हमेशा we should seek guidance from the devotees. भक्तों की guidance की आवश्यकता रहती है, जो हमें सिखाते। अलग अलग किस्म के विद्यार्थी होते, एक तो वो होता है कि जो हज़ार बार सुनाओ फिर भी वैसे का वैसा रहता है, एकदम थर्ड क्लास। और कुछ तो होते उल्टे उल्टा करते, दिखा दे प्रभु जी आई डोंट फॉलो सी, दिखा दे ऐसे करते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सुनते हैं तब तक तो वाह सच ए नाइस प्रभु जी योर लेक्चर इज सो नाइस, वी मेड सो मैनी पॉइंट्स ऑन द नोटबुक, ताकि हम दूसरी 10 जगह को बता सके ये you know, कि मैं भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अभी फॉलो मत करो मैं केवल लिखता हूँ इसमें, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है प्रभु यस सो नाइस पॉइंट्स। लेकिन फिर क्या होता है, सब अब चला जाता है। कोई आज 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 मुझे कोई कह रहा था प्रभु वैष्णव क्वालिटीज आर लाइक दिस, शास्त्र शास्त्र दो तीन बार बताया। मैंने कहा कि प्रभु जी कई बार क्या होता है कि जो भक्त होते हैं ना वो कलयुग के प्रभाव में आते हैं, या फिर जो शुद्ध नहीं होते एकदम, तो क्या होता है कि शास्त्र की बात उनको केवल श्रीमद् भागवतम क्लास जो मॉर्निंग में होता है ना, तो वो एक घंटे में सीमित हो जाती है। भागवतम क्लास में अच्छा लगता है शास्त्र का वचन, हाँ अच्छा है अच्छा है बड़ा अच्छा है, लेकिन जैसे क्लास ख़त्म होता है फिर रूटीन हो जाता है वापस। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में सुना तो अच्छा लगा फिर बाकी हमें जो करना है वही करेंगे, दैट्स वेरी बैड। तो वो एक होता है, दूसरा ये होता है कि जो भूल जाता है लेकिन प्रयास करता है कि उसको याद करे, उसका अनुसार कार्य करे, फिर भूल जाता है, ठोकर खाता है, गलती कर बैठता है, फिर वापस याद आता है भक्तों की संगति में, फिर वापस सुधरने का प्रयास करता है। और उसके आगे फिर वो होता है कि जो सुनता है और फिर तुरंत प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई करता है, तुरंत उस पर काम करने का शुरू कर देता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, उसकी प्रगति बड़ी तेज़ी से होती है। सीनियरिटी इस तरह से जज नहीं होती कि आप कितने साल से भगवान की सेवा में हो, आई मीन टू से कितने साल से जुड़े हुए हो। सीनियरिटी जज होती है कि आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो गुरु और कृष्ण को, उस तरह से जज होती है। ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट द ओल्डर डिवोटीज, लेकिन आइडियली सीनियरिटी इज दिस, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सीनियर डिवोटी दे नेवर, पहले सीनियर भक्तों का पहला लक्षण है कि वो कभी अपने आप को सीनियर घोषित नहीं करते। जब वो घोषणा करना शुरू कर देते हैं तो आप समझ लेना कि अभी वो सीनियरिटी को समझे ही नहीं है, या फिर वो प्रूव करना चाहते हैं। हाँ अगर अंतिल उनको कोई अथॉरिटी ने बताया कि आपको इस तरह से पेश आना है तो अलग बात है, लेकिन हार्ट इंटरनली, आज एक लेक्चर में कह रहा था प्रभुपाद एक समुंदर जैसे थे, बहुत सारी लहरें आती है, संत होते हैं ना समुंदर जैसे, बहुत सारी लहरें आती है, लगता है आपको कि देखो समुंदर कैसा, लेकिन अंदर भीतर में समुंदर कैसा होता है, एकदम शांत। तो वैष्णव होते हैं उसका हृदय अगर आप चेक करोगे कि उसके हृदय में क्या है, एकदम निर्मल शांत, उसको किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाहर से आपको लगता है कि वो इसको डांट रहा है, उसको डांट रहा है, या उसको समझा रहा है, उसको, क्योंकि उसको बताया गया है कि आपको इस तरह से काम करना है। फॉलो वेल, दिस इज वेरी डीप टॉपिक, ये बहुत बड़ा खुयस सब्जेक्ट है, इस पर हम और कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि हमें केवल भगवान की खुशी के लिए काम करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। अगर अपनी खुशी के लिए काम करेंगे तो भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। सो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भगवान नरसिंहदेव किस तरह से प्रकट्य की लीलाएँ में क्या क्या लीलाएँ हुई थी, और हमें लास्ट टाइम बताया गया था कि हम कुछ शेयर करें हमारा जर्नी मायापुर धाम का कुछ पॉइंट्स अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो। और दूसरा मेरे दिमाग में ये था कि आज वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस है, तो मैं सोच रहा था वृंदावन दास ठाकुर के विषय में पहले बताना चाहता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जो है उनके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला के जो व्यास है वह है वृंदावन दास, पूर्व जन्म में वो वृंदावन थे। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं को बड़े विस्तार से लिखा है, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं का समुंदर, उसमें से कुछ लिखते 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 ग्रंथ इतना बड़ा हो गया, वो सोचने लगे कि इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा बाद में। तो इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि और कोई भक्त आएगा और वो चैतन्य महाप्रभु की जो अंत्य लीला है उसको विस्तार से बताएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विषय में उन्होंने बताया, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की जो नवद्वीप लीला, मायापुर लीला है, बाल्य लीला है, युवा लीला है निमाय पंडित की, उस लीला का विस्तार से वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो लोग महाप्रभु के नाम पर धोखाधड़ी करते, जो सहजा प्रकृति के लोग हैं, उनको मैं अपने पैरों से उसके माथे पे लात मारता हूँ। आई डोंट वॉन्ट देम एट ऑल, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। ऐसे लगेगा कि इज सच अ हम्बल डिवोटी, व्हाट इज ही डूइंग, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि आचार्य, हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसा बोल करके माय गॉड, व्हाट डिड आई से, आचार्य कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर उन लोग का भी उद्धार कर रहे हैं, किस तरह से, अपने चरण का धूलि दे करके। जो लोग भगवान के नाम पे चीटिंग करते हैं, जो सहज प्रकृति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उन लोग को उद्धार तो संभव है ही नहीं, लेकिन वैष्णव इतने दयाल होता है कि अपने चरण की धूल उसके माथे पे डाल देते और इस तरह से उसका उद्धार हो जाता है। यस, ये है भगवान के भक्तों का स्वभाव। भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु होते हैं। भगवान तो कृपालु है ही, क्योंकि हमने लास्ट में जैसे चर्चा किया था कि भगवान दिखता ऐसा कि पक्षपात करते, समोहम सर्वभूतेषु बोलते हैं, लेकिन फिर मारते भी है। ये क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भगवान जीसस है, तुम्हारे भगवान कृष्ण है, तुम्हारे भगवान तो सबको मारते रहते हैं, इसको मारते आज, इसको मारा कल, इसको मारा, हमारे जीसस किसी को नहीं मारते। तो फिर हमारे भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा किसी को नहीं मारते, जो दुष्ट होते उसको मारते हैं और जो भक्त होते उसकी रक्षा करते। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जीसस तो उनको भी नहीं मारते, दुष्ट उसको भी नहीं मारते, उसकी भी रक्षा करते। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, कि भगवान जिसको मारते हैं उसका भी उद्धार होता है, वो और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण जिसका उद्धार कर सकता है, ऐसा उद्धार और कौन कर सकता है क्या? पुत्रिया को मार दिया तो उसको माता की स्थान, माता का स्थान दे दिया, ये और कोई कर सकता है? किसी के वश में है क्या? नहीं। भगवान ने शंखचूर को मार दिया था, वो भी उसका भी उद्धार हो गया शंखचूर को, लेकिन शंखचूर के पास एक मणि था, है ना? ये मणि जो है वो पहले बलराम, भगवान ने बलराम को कहा कि तुम गोपियों की सुरक्षा करो, फिर वो मणि चुरा, भगवान उसके मणि निकाल के लेके आए, और मणि निकाल के लेके आए तभी इतना अच्छा काम किया बलराम ने गोपियों की सुरक्षा की, तो भगवान को कुछ पुरस्कार देना चाहिए ना उनको, तो कृष्ण ने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ बलराम तुम पर, यू प्रोटेक्टेड द गोपीज, ये मणि तुम्हें गिफ्ट करता हूँ तो ये मणि तुम रखो, आई गिफ्ट यू बलराम। बड़ा वाह, थैंक यू कृष्ण, सो नाइस, बहुत सुंदर है मणि, बहुत अच्छा लगा भगवान। लेकिन बाद में बलराम ने सोचा कि ये मणि मुझसे ज़्यादा, आई शुड नॉट कीप इट, मुझे इसको राधा रानी को दे देना चाहिए। तो राधा रानी को गिफ्ट दे दिया बलराम ने। तो फिर राधा रानी उस मणि को लेके रहते, सुबह दिया था, शायद शाम को राधा रानी को दे दिया। सुनो कथा। तो शाम को फिर राधा रानी को दे दिया, समथिंग लाइक दैट। सो राधा रानी कैप्ट इट, हमेशा रखते थे उनको, या कृष्ण की याद कराता था वो मणि से, भगवान उसको मारा था हमारी रक्षा की भी, है ना। यू शुड कीप, हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान ने जहाँ जहाँ पर हमारी रक्षा की है उस चीज़ों को याद रखना चाहिए। देखो कृष्ण ने यहाँ पर रक्षा की, कृष्ण ने यहाँ पर रक्षा की, वही तो प्रेम है ना, वही तो भक्ति है। आप अपने मित्र को बार बार याद करते हो कि नहीं, कि देखो इसने मुझे ये रक्षा किया, मुझे इस तरह से मुझे हेल्प किया, यू रिमेंबर हिम ना, जिसने जो आपका सही में आपका हेल्प कर रहा है उसको आप याद नहीं करते, यू रिमेंबर। तो आप कृष्ण को तो बार बार रिमेंबर करना चाहिए, क्योंकि एक एक सांस वो आपकी उनकी कृपा से ले रहे हो, एक सांस ले रहे हो वो भी उनकी कृपा से, खाने में जो स्वाद आता है वो भी उनकी कृपा से, खाना डाइजेस्ट होता है वो भी उनकी कृपा से, आपको सुविधा प्राप्त होती है, सेवा मिलती है, वो भी सब उनकी कृपा से हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। तो फिर इट्स बेटर टू रिमेंबर कृष्ण ऑल द टाइम। तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे ये, लेकिन भगवान फिर भी सब पर कृपा करते हैं, इज ऑलवेज मर्सीफुल टू एवरी वन, सब पर। असुरों को मारते हैं लेकिन उनका उद्धार होता है, ऐसे तो भगवान आत्माराम है। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई किसी चीज की मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, यू नो, कि मुझे थर्ड पार्टी क्या, ही डजंट नीड एनीवन। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आउटसाइड सोर्स नहीं चाहिए उनको आनंद देने के लिए, सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको कोई, हम सब की आवश्यकता है क्या भगवान को, है नहीं है? भगवान को हमारी आवश्यकता है नहीं, है ना? कंफ्यूज। भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। आप भगवान की शरणागत नहीं होते, आप माया की शरणागत होते हो, सेवा नहीं करते, तो इसमें भगवान का कोई नुकसान नहीं, हमारा नुकसान होता है। फिर भी दयालु है, फिर भी आते हैं, बताते हैं ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो वैसा करो, दिस वे यू कैन कम टू मी, इस तरह से तुम मेरी शरणागत हो सकते हो। सो वृंदावन दास ठाकुर जो है वो मामगाछी जो जगह है, जो कि नवद्वीप का अयोध्या धाम है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं कि कुमारहट में उनका जन्म हुआ था और वो रहते थे मामगाछी में, उनका बाल्यकाल मामगाछी में। उनकी माता का नाम था नारायणी और उनके पिता का नाम था वैकुंठ। तो लेकिन नारायणी जब बहुत छोटी थी और वृंदावन दास उनके गर्भ में थे, पहला ही बच्चा था, उसी समय वो विधवा हो गई, उनका जो पति था वैकुंठ वो गिर गए, तो उनके पास और कोई अस्त्र नहीं था। तो कुछ समय तक वो मामगाछी में वासुदेव दत्ता के घर पे रहे और वहाँ पर उनका वो आगे बड़े बड़े हुए, बचपन सब मामगाछी में हुआ। वासुदेव दत्ता जो विग्रहों की पूजा करते थे, बाद में फिर नारायण ने उन विग्रहों की पूजा की, और फिर सुभाष ठाकुर जो कि बांग्लादेश में उन सबका जन्म हुआ था, लेकिन रहते थे नवद्वीप धाम में, सुभाष आंगन जो है ना, जो कि सुभाष का घर है, तो वहाँ पर वो सब रहते थे चारों भाई। और नारायणी जो है वो बाद में उनका कोई आश्रय नहीं होने के कारण मालिनी देवी ने उनको कहा कि तुम हमारे साथ रहो। मालिनी देवी कौन थे? सुभाष ठाकुर के पत्नी मालिनी देवी। तो फिर वो वहाँ पर रहे और चैतन्य महाप्रभु ने जब उनका लीला प्रस्तुत किया तब ये बालक केवल 4 साल का था, और जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य प्रभु जब संन्यास लिया था वो 400 के थे, और जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो करीब 20-22 साल या कुछ ऐसी कुछ उम्र होगी उनकी, और वो नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा लिया था। नवनाश ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य है, उस वृंदावन दास ठाकुर के बाद नित्यानंद प्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दिया, वो अंतिम शिष्य है। इसलिए उन्होंने चैतन्य भागवत इतना सरल भाषा में प्रस्तुत किया, इतनी सरल लैंग्वेज में, उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई वो टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल यू नो कोई इन एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा आसान है, एकदम स्टोरीज, ओनली स्टोरीज। और इसका पीछे ये रहस्य था कि वृंदावन दास ठाकुर ऐसा चाहते थे कि बंगाल का बच्चा भी चैतन्य भागवत पढ़ सके, ये उनकी इच्छा थी, दैट वॉज द रीज़न। और आज भी आप देखो बंगाल में जाओ, चैतन्य चरितम तो आपको मिले या नहीं मिले, चैतन्य भागवत तो सब जगह मिल जाएगा, चैतन्य भागवत सब किसी के घर में जाओ उसके घर में चैतन्य भागवत मिल जाएगा, सो फेमस, आज भी बड़ा फेमस है चैतन्य भागवत, बंगाल में मिल जाएगा कहीं पर भी, दैट वॉज द रीज़न। बट वृंदावन कृष्णदास कविराज उन्होंने पूरा तत्व ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा, उन्होंने सेवा कितने 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 लोग को उपदेश दिया मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ने, रूप सनातन, 6 गोस्वामी, फिर सर्वम भट्टाचार्य, प्रकाश स्वामी सरस्वती, रामानंद रॉय, ये विशेष करके वो भक्त है जिनसे विस्तृत रूप से वार्तालाप हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाएं, अपना मार्गदर्शन इन शिक्षाओं में रखा है। तो चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा प्रयास किया है कि ये सारी शिक्षाएं जो है वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रकाशित हो, तो उन्होंने उसको पूरा प्रकाशित किया उसमें, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है। तो ये लीला और विज्ञान ये दोनों एक साथ है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ का अनुवाद करना उचित समझा, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन किया। तो ये बुक्स जो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा बताना हमें जो अनुवाद प्राप्त हुआ है वो सब, ये अमृत से पूरा भरा हुआ है, इतना महान अमृत है ये, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जो है वो हमारे चैतन्य लीला के व्यास है, उनका पूरा उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबको तो आप माथे पे लात मारो, हमारे सिर पे भी माथे पे लात मार दो, है ना, तो आपके चरण की धूली हमारे मस्तक पे भी आ सके, कभी हो सकता है कि वो डायरेक्ट लात नहीं मारे तो परंपरा से लात खिलवाए बाय परंपरा, या कोई गुरु, कोई भक्त, कोई गुरु अगर आपको डांट देते तो, या वैष्णव आपको डांट दे तो अच्छी बात है ना, वो तो आपको वृंदावन ठाकुर की लात खाने को मिलती है ना, तो ये विनम्रता का भाव होना चाहिए, वृंदावन ठाकुर के सामने लेना चाहिए। और हम बताना चाहते हैं संक्षिप्त में, ये हम गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर हम 3 दिन रहे थे जगन्नाथपुरी में, और हमारे साथ हमें सहयोग देने के लिए, हमें कृपा हमें देने के लिए हमारे साथ 2 प्रसिद्ध भक्त थे, जगत चक्षु प्रभु और सनातन गौरांग प्रभु, इन दोनों ने हमारी बड़ी सहायता की है और बड़ी कृपा की है उन लोगों ने, जगन्नाथपुरी में भी उन्होंने बहुत कृपा किया, बहुत सेवा किया, तो सेवा करने से ही यू नो वो संतुष्ट हो जाते थे दोनों, दैट इज़ अ क्वालिटी, यू नो हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के गुण को देखे, उनके दुर्गुण को नहीं देखे, है ना, ये प्रयास रखना चाहिए ना। पहली बार मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, पानी आधा भरा है और आधा खाली है, तो आप क्या कहोगे, पानी आधा भरा है अच्छी बात है, एक एक व्यक्ति ऐसा कहता है पानी आधा भरा है और दूसरा क्या कहता है पानी आधा खाली है, तो ये दृष्टिकोण का विचार है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई गुण मिल जाएगा आपको, हमेशा मिलेगा, लेकिन आप कैसे हो ये आप पर निर्भर करता है, अगर आप दोष ढूंढते हो तो इसका अर्थ होता है कि हमारा हृदय भी दोष से भरा हुआ है। आप समझे क्यों हम दोष ढूंढते हो? क्योंकि हमारी ये दृष्टिकोण है कि हम दोष ढूंढना अच्छा लगता है। और दूसरा एक भक्त क्या होता है, उसका हृदय इतना कोमल होता है, इतना स्वच्छ होता है कि वो तो गुण देखता है, उसको दोष मिलता भी नहीं है, उसको गुण देखता है। एक भक्त था गौड़िया मठ में, बहुत पहले की बात है, जब प्रभुपाद के बीच भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब थे, तो भक्त एक भक्त था, उसका मंदिर में कुछ आचरण उसका ठीक नहीं था, तो उसको उसके जो गुरु बंधु वगैरह सब थे उन लोगों ने उसको निकाल दिया मंदिर से। यू कैन नॉट स्टे इन द टेम्पल, मंदिर में नहीं रह सकते, निकल जाओ। टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी नया मंदिर बना नहीं था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये नहीं पता था कि इनको निकाल दिया गया है। तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए टेम्पल ओपनिंग के टाइम पे, उसके कुछ दिनों पहले भक्तिदास सरस्वती महाराज आए, देखा वो कहीं दिख नहीं रहा है, पूछा भक्तों को कहाँ पर है वो, तो भक्त कहाँ गया? बोले महाराज छोड़ो क्या इसका, ये तो ऐसा ऐसा था वैसा था, उसको निकाल दिया। तो भक्तिदास सरस्वती महाराज ने क्या कहा पता है? भक्तिदास सरस्वती महाराज ने कहा जब तक वो भक्त यहाँ नहीं आएगा तब तक टेम्पल का ओपनिंग नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, सब चौंक गए, है ना। कोई सोच सकता है कि ये क्या है, इसको हमने उसकी गलती के कारण उसको निकाल दिया गया और उसको इतना सम्मान कि टेंपल ओपनिंग नहीं होगा वो नहीं आएगा तो, हाँ इतना बड़ा सम्मान तो हो सकता है ना। ऐसे फिर भक्ति सबसे महाराज से इसका थोड़ा पूछा कि क्या इसका रहस्य क्या है, तो भक्ति सबसे महाराज बड़ा आसानी से समझ आया कि उसमें हजार दोष होंगे लेकिन भगवान की शरणागत है ना, वो भगवान की सेवा करता है, तो आप उसको क्यों नहीं ढूंढते? यू नो ट्राई टू फाइंड आउट गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण को देखो हमेशा, तभी दिमाग ठीक रहेगा। नहीं तो आप पूरा समय कौवे की तरह का आखा आखा करते रहोगे। ये है ऐसे, आप समझे? सो व्हाट यू वांट, यू वांट टू बी लाइक, आपको कोयल की तरह बोलना है या कौवे की तरह बोलना है, कैसे बोलना है? मैं तो रोज सुबह, हमारे पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद है, यहाँ पर रोज सुबह कम से कम 2 घंटा कोयल मनोरंजन करती है, रोज सुबह एवरी डे नॉन स्टॉप, एक भी दिन खाली नहीं जाता है डेली। ऐसा नहीं कि अभी से कितने समय से, 2-3 साल से तो मैं सुन रहा हूँ निरंतर, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। इमीडिएटली या तुरंत उसके आवाज़ से ही मुझे जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, मायापुर धाम का स्मरण हो जाता है तुरंत उसके आवाज़ से ही, है ना। तो आपको क्या पसंद है, कौवे का आवाज़ पसंद है या कौवे का आवाज़ पसंद है? कौवा भी आता है, इट्स नॉट दैट, कौवा नहीं आता, कौवा भी हमारे घर के सामने एक छोटा सा एक पेड़ है, उसके ऊपर बैठ के बड़ा मज़े से 2 घंटा जप करता है, का 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 करता रहता है, लेकिन उसका सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आपको क्या करना है, आप कोयल की तरह बोलना चाहते हो या कौवे की तरह बोलना चाहते हो? तो अगर आप वैष्णव का गुण गाओगे तो वो कोयल की तरह होगा, लेकिन आप वैष्णव के दुर्गुण गाओगे तो आप उसकी सफाई करोगे और बाकी सब कचरा आप में आ जाएगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो 3 दिन हम जगन्नाथपुरी में थे और वहाँ पर हमने चेतन यात्रा का दर्शन दिया था। तो एक बार हमने तय करके ही गए थे कि इस बार चंदन यात्रा का दर्शन करना है, तो और फॉर्चुनेटली हमने उस दिन चंदन यात्रा का दर्शन लिया था जिस दिन चंदन यात्रा का पहला दिन था, अक्षय तृतीया, और वो भी जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र धाम में। हमने उसका महिमा पढ़ा कि जो कोई व्यक्ति चंदन यात्रा का उत्सव जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथपुरी में करता है, हाँ, तो उसको दूसरी बार दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अक्षय तृतीया का ये महिमा है। उसी दिन पर्टिकुलर वो दिन अक्षय तृतीया के दिन, हाँ, सो मैनी थिंग्स, परशुराम का जन्म हुआ था, गंगा का अवतरण हुआ था, और हाँ क्या था, नहीं गंगा का बोलते हैं भगवान ने उसको बलि को जो वरदान दिया था उस दिन दिया था, और वामन देव का जन्म भी उस, नहीं उस दिन नहीं हुआ था, उन्होंने उस पर प्रहार किया था तो गंगा का पानी वहाँ से आया था तो उस दिन है। फिर दूसरा ऐसा है कि सो मैनी थिंग्स, भगवान रामचंद्र जी वनवास में गए थे और सो मैनी थिंग्स लाइक दैट, उसके पीछे बहुत सारा ऐसा है। तो ये दुर्वासा मुनि का उद्धार भी उसी दिन हुआ था, आई मीन भगवान द्रौपदी के पास आए थे तो उसी दिन हुआ था ये लीला। तो उस दिन हम जगन्नाथ जी के पूरा चंदन यात्रा किया रात को 11:30-12 तक। फिर दूसरे दिन लोकल प्लेसेस में से कुछ स्थान पर गए थे और हरिदास ठाकुर का जो जगह है वहाँ पर हम गए थे, उनका रहना वगैरह सब जगह पर। और तीसरे दिन फिर हम गए थे ये टूटा गोपीनाथ, गोपीनाथ जी और रामानंद राय का घर, तो रामानंद राय जी स्पीकर का पूजा करते थे तो उनके पास गए थे। और टूटा गोपीनाथ जो है वहाँ पर हमने कुछ कीर्तन किया था, प्रभु सनातन प्रभु ने कुछ कीर्तन किया था, जगत चक्षु प्रभु ने कुछ गाया था, वो बड़ा अच्छा सुंदर भजन गाया था उन्होंने। नहीं वो बिना बुक के गा रहे थे, आप सोचिए गोपीनाथ जी के विषय में उनका इतना प्रेम था, मैं बुक खोल के पढ़ रहा था और जगत चक्षु प्रभु बिना बुक के गा रहे थे। तो गोपीनाथ जी की स्तुति हो रही थी तो बड़ा अच्छा लगा सब भक्तों को। और फिर वी हैड राजभोग प्रसाद फ्रॉम जगन्नाथपुरी एंड देन वी वेंट इन मायापुर, हम गए थे मायापुर में 7 दिन तक लगातार, हमें 7 दिन तक होता है बोट फेस्टिवल जिसमें से हमें 3 दिन या 4 दिन का मिला था, तीन चार दिन का एवरीडे बोट फेस्टिवल होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मायापुर जगन्नाथपुरी दोनों जगह बारिश हो रही थी जब हम गए तब, और मायापुर में भी बारिश था और भगवान की इच्छा थी कि हम कलकत्ता इस्कॉन का गोविंददास भी देखें और उसका प्रसाद खाए। तो हम किसी कारण से वहाँ पर भी पहुँच गए। और मायापुर में बड़ा सुंदर नौका विहार हुआ, बारिश भी हुई नौका विहार के समय पे। एक दिन ब्लू कृष्ण थे पूरा नील माधव के जैसे, माधव और नील माधव, जय मेहता स्वामी खेम। जब हम पहुँचे उसी दिन शायद पहुँच गए, जय पता का महाराज भी उसी दिन आ गए थे। और ऑलमोस्ट एवरीडे हमें उनका दर्शन मिलता था ऑलमोस्ट, या शाम को या दोपहर या सुबह कहीं पर भी तो उनका दर्शन मिल जाता था। और फिर उसके बाद भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने 3-4 दिन का नरसिंह कथा निरंतर, बांग्ला में होता था लेकिन मैं सुनता था उसको, तो वो निरंतर कथा हो रहा था। और उसके बाद अवधिवास, उसके पहले हम गए थे अंबिका कालना। अंबिका कालना वो स्थान है जहाँ पर गौरांग प्रभु और वो भी सब आए थे। अंबिका कालना वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने गौरदास पंडित का उन पर कृपा किया था। फिर वहाँ से हम गोद्रुम गए थे, पूरा गोद्रुम द्वीप का दर्शन हुआ था। चंपाहटी गए थे वहाँ पर भी दर्शन, हमारी इच्छा थी इस बार कि एक दो स्थान जाए, तो इन लोगों का बड़ा आग्रह था, जगत चक्षु प्रभु का बड़ा आग्रह था कि हम गोद्रुम जाए और अंबिका कालना जाए। तो फिर उनके कहने से हम लोग गोद्रुम और सब जगह गए। और एक दिन हम गए थे राजापुर जगन्नाथ जी के पास, तो जगन्नाथ जी जो है बड़ा अच्छा कृपा दिया हमें, उनको कुछ कीर्तन करने का सेवा दिया हमें। और नीचे वो सिमंतिनी देवी और उनके महाप्रभु उनके साथ है, तो दैट वी स्पेंड देयर। देन नरसिंह चतुर्दशी और उसका अगला दिन, 2 दिन कीर्तन मेला का प्रोग्राम रखा था। तो 2 दिन सुबह 12 से रात के 12 तक, सुबह 10 से रात के 10 तक नॉन स्टॉप कीर्तन चलता था, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स, विदेशी भक्त भी थे, प्रभुपाद डिसाइपल महात्मा प्रभु भी थे, और ऐसे भक्तों ने वहाँ पर कीर्तन किया। दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी, वो भी बहुत सुंदर अभिषेक हुआ। जना निवास वो मुझे बता रहे थे कि एवरी ईयर जो अभिषेक होता है उससे अभिषेक थोड़ा सा लंबा हुआ इस बार, अभिषेक थोड़ा सा लंबा हुआ। और बार बार पूछ रहे थे हमारे जो दूसरे पुजारी कि जना निवास प्रभु अभी हम अभिषेक को अभी बंद करें, अभी रोके। जना निवास प्रभु उत्तर ही नहीं दे रहे थे, यू वॉज नॉट आंसरिंग ऑल्टर के अंदर। उनको बार बार कहते थे कि अभी कैन वी स्टॉप नाउ। जना निवास प्रभु वॉज नॉट आंसरिंग, आंसर ही दे क्योंकि उनको मैंने जना निवास प्रभु को कहा कि हाँ बोले यस वी शुड डू। उनको इतना स्नान हुआ, बोलो गर्मी का मौसम था, स्नान हो रहा था और नरसिंहदेव भी खुश लग रहे थे। तो फिर वी कंटिन्यूड, तो दो ढाई घंटा अभिषेक चला भगवान नरसिंहदेव का। उसके अगले दिन बड़ी अच्छी सी तेल मालिश मसाज हुआ, इतना चमक रहे थे भगवान तेल मालिश के बाद नरसिंहदेव, बहुत चमक रहे थे, यू नो इतना खुशबू आ रहा था और एकदम फ्रेश हो गए थे। किसी को भी आप किसी को मसाज करो तो क्या होता है, वो फ्रेश हो जाता है ना किसी को मसाज करो तो मसाज के बाद एकदम एकदम चमक रहे थे, बहुत फ्रेश लग रहे थे। फिर दूसरे दिन उनका अभिषेक हुआ और ही वॉज वेरी हैप्पी, नरसिंहदेव वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश लग रहे थे। बाद में उस दिन बारिश भी हुआ, इंद्र भी आ गए थे वहाँ पर अपना जल पात्र लेकर के अभिषेक करने के लिए। तो फिर बाद में द नेक्स्ट डे या वी स्टेड, ज़्यादातर भक्त उसी दिन दूसरे दिन चले गए थे, हम उस दिन रात को गए थे और दैट्स इट, केम हियर। फॉर्चुनेटली वी हैड अपॉर्चुनिटी टू हमें संग मिला था भक्तों का वहाँ पर, उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, तो दैट वी कैन डिस्कस सम टाइम लेटर सम ऑफ दोज पार्ट्स, एवरी थिंग इज़ नॉट पॉसिबल, सब मुश्किल है इतना सब बताना। और नृसिंहदेव के विषय में संक्षिप्त में अगली बार थोड़ा सा बताएंगे आपको, और फिर अब जगन्नाथ जी की कथाओं के विषय में कुछ बताएंगे आगे, जगन्नाथ जी के विषय में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? नहीं, हरे कृष्णा।